padre sale alguien con ellos.
Sí, sí.
No, me ha pedido que.
ये कहने की जरूरत है आज कुछ कहने की जरूरत है
उनको पर्ची पता लगा था ना उसका है मेरी बुआ से मैं हैरान हो गया मैं भाई उनको कई सालों से चले हाँ मैं तो विश्व खुश होता था के साथ चल रही
प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गाया पाना था तू तो कल हम सभी बाबा से मिलन करने वाले तो उसकी तैयारी अभी से चालू करनी है। बड़े लोगों से मिलने जाते हैं तो तैयारी करनी होती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है क्योंकि तुम बड़े आदमी हो बाप तुम्हें नमस्ते करता है नहीं क्योंकि बाप को तुम बड़ा आदमी समझकर नमस्ते करते हो और बाप ही तुम्हें विश्व का मालिक समझकर नमस्ते करता है। तो हमें भी उस मिलन की तैयारी करनी है। शास्त्रों में कहीं दिखाया है दो भक्त तपस्या कर रहे हैं उसमें जो पहला भक्त है कब से तपस्या कर रहा है पर कुछ हो नहीं रहा है कितने वर्ष बीत गए वन में तपस्या कर रहा है परंतु कोई आसार नहीं प्रभु मिलन के क्रोध से थोड़ा भरा हुआ है दिखाया नारद वहां से जा रहा है और नारद उससे पूछता है मैं भगवान के धाम जा रहा हूं कोई प्रश्न है तो पूछो उसे थोड़ा और क्रोध आ जाता है वो कहता है मैं कब से तपस्या कर रहा हूं पूछो उस नारायण से जाके कि कब मुझे दर्शन होंगे सारा संसार छोड़कर यहां आया हूं इस जंगल में भूख प्यास सब कुछ छोड़कर मैं उसकी तपस्या कर रहा हूं फिर भी उसके दर्शन नहीं हो रहे कब मुझे दर्शन होंगे जरा पूछ के आना वो कहता है पूछ के आऊंगा। नारद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक दूसरा भक्त है प्रभु प्रेम में मगन झूम रहा है गा रहा है गीत गा रहा है नारद उसे देखते हैं और पूछते क्या तुम्हारे पास भी कोई प्रश्न है वो कहता है मैं सभी प्रश्नों से पार हूं मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है और वो अपनी मस्ती में मौलाई मस्ती मगन है हरिनाम का गुणगान कर रहा है। तो नारद वैकुंठ धाम से जाकर वापस आते हैं पहला भक्त अभी तो बहुत ज्यादा क्रोध में पूछता है कुछ उत्तर मिला या नहीं मिला। नारद कहता है मिला है। भगवान ने कहा है 3 जन्म के बाद तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी। उसे इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है। अब 3 जन्म 30 साल तो यहां हो गए और 3 जन्म ये कैसा अन्याय है, ये तो अन्याय है, क्रोध से भर जाता है। नारद आगे बढ़ते हैं। दूसरा भक्त वैसे ही मगन अवस्था संसार के भान से परे, देह की चेतना से परे गा रहा है, झूम रहा है। नारद उससे पूछते क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारी मुक्ति या तुम्हारा प्रभु मिलन कब होगा। वो कहता है मुझे कोई इच्छा नहीं है जानने की क्योंकि मेरा मिलन तो हो ही रहा है। नारद कहता है फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्या उत्तर लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। वो कहता है बताओ। तो नारद कहता है देखो मैंने भगवान से पूछा तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी मुक्ति कब होगी या तुम्हें प्रभु मिलन कब होगा। तो वो भक्त पूछता है कब होगा। नारद कहते हैं वो वृक्ष देख रहे हो सामने, उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं बस उतने जन्म तुम्हें लेना है। तो वो भक्त झूम उठता है कि वह करुणा निधान कृपा सिंधु कोमल हृदय अति दीन दयाला बिनु कारण रघुनाथ कृपा, ऐसे मेरे प्रभु कितनी अपार अनुकंपा है उनकी कि इस संसार में असंख्य वृक्ष है और उनके अनगिनत पत्ते हैं। वो चाहे तो ये भी कह सकते थे कि इतने जन्मों के बाद मुझे प्रभु मिलन होगा, पर उनकी असीम कृपा ही है मुझ पर बिनु कारण कृपा कि केवल इस वृक्ष एक वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मेरा प्रभु मिलन होगा। इतना कहता है और शास्त्र में दिखाया वो भक्त अदृश्य हो जाता है, तुरंत मुक्ति को पा लेता है। जन्म जन्म हमने भी बहुत भक्ति की है, अब तो आया है, अब वो राम आया है। वो राम वो रघुनाथ नहीं, आज की मुरली में वाक्य है इस जगह, वो राम वह रघुनाथ नहीं, ये राम निराकार है शिव बाबा, वह निराकार वह राम। अब आया है सबको आराम देने वाला, सबका पालन करने वाला वह राम। अब आया है विश्व भलन भरन पालन कर जोई ताके नाम राम अच होई, वह राम अब आया है। तो क्या उस राम के मिलन के लिए हम तैयार है? सभी माताएं तैयार है? हैं तैयार? कौन सी तैयारी कर रखी है? आचार्य भी बनने की और कौन सी तैयारी कर रखी है? ऐसी कौन सी तैयारी करके जाए कि उसके सामने जाते ही वो खुश हो जाए और फूलों की वर्षा कर दे एकदम। ऐसी कौन सी तैयारी कर दे कि स्वर्ग में आसमान में देवताएं प्रकट हो जाए और फूलों की वर्षा कर दे? कौन सी तैयारी की है? जो की है वो बताओ, जो मूल्यों में लिखी है वो नहीं। कौन सी तैयारी की है? बाबा ने कहा था एक मास मन को शक्तिशाली बनाना है, मन का मौन, मन शांत, मन के डांस की है, मौलाई मस्ती, इलाही मस्ती, नारायणी नशा, रूहानी नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। क्या उस नशे में है या संसार का नशा है या विकारों का नशा है या व्यर्थ का नशा है या नकारात्मक भाव का नशा है या देह का नशा है? कौन सा नशा है? अव्यक्त बाप दादा से मिलन की विधि है व्यक्त स्थिति। वो मिलन नहीं मना रहा है जो सामने बैठा है। कौन कहां बैठा है इसका इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह देह का मिलन नहीं है, अव्यक्त मिलन है। वह सृष्टा, वह सृष्टि का रचयिता जब इस धरातल पर आता है, उसके प्रकंपन संपूर्ण वसुंधरा पर फैलते हैं। हो सकता है कहीं दूर एक माता बैठी है जिसे दिखाई भी नहीं दे रहा है बाबा, शायद भाषा भी इतनी समझ में नहीं आती है, किस भाषा में वो बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, परंतु हो सकता है उसी को अनुभव हो रहा है। और जो वहां घूम रहे हैं आसपास, उनको कोई अनुभव नहीं। जो कारोबार समझ रहे हैं इसको, उन्हें कोई अनुभव नहीं। अनुभव उनको होता है जिन्होंने उसका कहना माना। आज की मुरली में है केवल एक बाप से ही सच्चा प्यार करो, बाकी दुनिया वालों से ऊपर ऊपर दिखावे वाला बोला है ना आज साकार मुरली, ऊपर से हाथ फेर देना बस। और सच्चा प्यार इधर भक्ति में कहावत है कि भगवान का प्यार कैसा होना चाहिए, जैसे दांत होता है ना, दांत में दर्द जब होता है वैसा। काम करते रहो वो दर्द होते रहता है और ध्यान वही रहता है। किस किस को हुआ है, सबने अनुभव किया होगा दांत का दर्द। तू देख, दांत का दर्द जब होता है तब सारा ध्यान थोड़ा सा मन के कोने में उधर ही रहता है। सारे काम कर रहे हैं दिन भर, परंतु ध्यान उधर ही लगा हुआ है। वैसा प्यार भगवान से हो, हत्कार दे दिल यार दे। संसार के सारे काम कर रहे हैं परंतु मन चित्त उधर लगा है, जैसे हॉस्पिटल की कोई नर्स जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम करती है, बच्चों के हॉस्पिटल में या बच्चों के वार्ड में 50 बच्चों की सेवा करती है दिन भर। सुबह जाती है 8 बजे, फिर लेके उसकी ड्यूटी होगी 3 बजे तक, 4 बजे तक सभी बच्चों को देखती है, परंतु उसका सारा ध्यान किधर रहता है, अपने बच्चों में जो घर में है। ऐसा नहीं कि जो वार्ड में जो पेशेंट है, जो बच्चे एडमिट हुए उनकी तरफ ध्यान नहीं है, सब करेगी उनके लिए, परंतु ध्यान कहाँ है उधर। भगवान भक्ति में कहा गया है तब मिलता है जब उसके लिए तड़प हो। आज मुरली में बाबा ने कहा है सबसे ज्यादा प्यार बाप से कौन करता है, आज की मुरली में बांधे लिया। क्यों कर दिया इतना प्यार? क्योंकि बंधन है, तड़प है, प्यास है। भक्ति में एक जगह कहा है 3 प्यार जब एक भगवान की ओर चले जाए तो भगवान मिलेगा। वही प्यार जो एक मां को अपने बेटे के लिए होता है, प्लस वही प्यार जो एक लोभी व्यक्ति को धन के लिए होता है, प्लस वही प्यार जो एक कामांध पुरुष को देर से होता है। ऐसे तीन प्रेम जब एक भगवान की ओर डायरेक्ट हो जाए तब वो आता है, उसके सिवा नहीं, उसके सिवा अनुभव भी नहीं। ये तीनों ही संसार के सांसारिक प्रेम, कुछ वासना, कुछ प्रेम कहो, ममत्व कहो, लोभ कहो, ये तीनों ही प्यार एकत्र होकर डायरेक्ट हो गए जब प्रभु की ओर, तब वो नीचे आएगा। ऐसी तड़प उसके लिए, ऐसा जिगरी प्यार उसके लिए, तब वो मिलता है, तब उसके मिलन से अनुभव होता है। अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है, किसी को भी नहीं हो सकता है। ऐसे ही जाके बैठ जाओ और अनुभव हो जाए, इतना सस्ता है अनुभव? ऐरा गहरा नत्थू खेरा कोई टॉम डिक एंड हैरी, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा जीवन का समर्पण, एक वैराग, असीम प्रभु प्रेम, वहां वो आता है। और कल हम उसी प्रभु से मिलेंगे। सुबह अमृत वेले आज कौन कौन थे यहां पर? बहुत सारे थे। उसमें हमने कुछ सात बातें सुनाई थी, या उन सात बातों पर कमेंट्री कराई थी। सात रंग, प्रभु मिलन के सप्त रंग। वैसे तो अभी कुमारों की क्लास थी और हम कुछ और सोच कर आए थे, परंतु अभी टॉपिक चेंज। कौन से वो रंग है प्रभु प्रेम के, जिन रंगों में हमें डूबना है और जिन रंगों में डूब कर हमारा प्रभु मिलन यादगार हो जाए। बहुत लंबे से इंतजार, समय से इंतजार किया है उसके मिलन का, सब्र किया है, पेशेंस। भक्ति में एक पात्र है शबरी, कथाकार कहते हैं उसका नाम निकला सब्र से, सब्र था उसके पास, इसके लिए नाम पड़ा शबरी। कोई कहते हैं शबर जाति से थी। दिखाया है उसके जीवन में, उसके पिता जो थे भीलों के राजा, उसकी शादी रच दी और शादी में बहुत सारी भेड़ बकरियां बलि के लिए लेके आई। जब उसने देखा कि मेरी शादी में इतने निरपराध प्राणियों की मृत्यु होने वाली है, वहां से भाग जाती है और वन में पहुंच जाती है। अपरिचित, बेपढ़ी लिखी, अनपढ़, गवार, वो छोटी सी कन्या क्या करे, सोचती है कुछ सेवा करो। देखती है बहुत सारे ऋषि मुनि आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, उनकी गुप्त रूप से सेवा करना चालू करती है, उनके लिए पानी लाना, उनकी लकड़ियां तोड़ना, और वहीं पर बड़ी होती है। उस आश्रम के जो ऋषि होते हैं मतंग ऋषि, उनकी वो बहुत सेवा करती है। और मतंग ऋषि जाते समय उसे वरदान देते हैं, कौन सा? एक दिन श्री राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे। वो रोज आश्रम की सफाई करती है, बाकी ब्रह्मचारी सन्यासी हंसते हैं उसके ऊपर, कब से इंतजार कर रही है, राम का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, तब से। कैसा विश्वास, क्योंकि गुरु ने कहा है वो आएंगे, राम आएंगे। रोज सफाई करनी, रोज फूलों से सजाना, रोज वो बेर तोड़ना और रोज खाके देखना खट्टे हैं या मीठे हैं, और निकाल के रखना। और एक दिन भगवान आते हैं, आते हैं तो उसे ये भी नहीं पता क्या उसकी स्तुति करूं। अधम अति अधम, नीच अति नारी, मैं तो बहुत नीच कुल की हूं, क्या मैं तुम्हारी वंदना करूं, भगवान से कहती है। और बेर उसको खिलाती है, झूठे वो भी, और भगवान भी बहुत प्रेम से उसे खाते है। मानहु एक भगति करनाता, मैं और किसी नाते को नहीं मानता, एक भक्ति का नाता मानता हूं। तो क्या ऐसी हमारी प्रतीक्षा है, क्या ऐसा सब्र, ऐसा पेशेंस हम में है, क्या हम देव की इसी विश्वास के साथ इंतजार कर रहे हैं, या कोई इंतजार ही नहीं, रूटीन हो चुका है, कारोबार बन चुका है। वो आता है, मुरली सुनाता है, दूसरे दिन मुरली हाथ में आ जाती है, मुरली एक बार पढ़ ली, ओम शांति, हो गया पूरा खेल, क्लास पूरा हुआ। तो बाबा शाम को आते हैं, उसके पहले आज से ही हम हो सके जितना मौन में रहे, हो सके जितना अंतर्मुखी रहे, हो सके जितना उसका आह्वान अभी से चालू कर दे कि वो आएगा, वो आएगा। इंतजार मन ही मन, सतत प्रतीक्षा, अफलक लोचन, ऐसी हमारी स्थिति हो, सारा ध्यान संसार से हटाकर यहां की वस्तु सब कुछ कर रहे हैं यहां पर, परंतु ध्यान उधर, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसका इंतजार। जो लिख सके है वो लिखे, यहां नहीं दिन भर। क्या मैं करूं, कौन सी मुझ में कमजोरी है, बाबा के सामने जब कल बैठूंगा तो कैसी मेरी स्थिति होनी चाहिए, उसकी तैयारी अब से करनी है। किस स्थिति में मैं बैठूं, कौन कौन सी माया मेरे जीवन में है, कौन कौन से कड़े संस्कार मेरे जीवन में, कौन कौन सी बातें हैं जो अब तक छिपा के रखी है। आज की मुरली में कहा है छिपाना नहीं, नहीं तो कड़ी सजा, कायदे यहां पर कड़े हैं। कौन सी गलतियां, कौन से संस्कार, कौन सी कमियां, कौन सी खामियां, कौन सी बातें मैं अब तक नहीं कर पाया हूं जो वो चाहता है मैं करूं, उस पर चिंतन करना, मनन करना, लिखना, और हो सके तो आज और कल दो दिन एक प्रेम भरा खत बाबा के नाम लिखना, एक स्नेह भरा खत लिखना बाबा को, दिल की दवात में कलम डुबो कर, बाबा तुम्हें एक खत लिखता हूं, यादें जिगर की स्याही लेकर, हाले दिल सच लिखता हूं, ऐसा स्नेहमयी प्रेम भरा पत्र उसके नाम, आज एक और कल एक, ऐसे दो पत्र लिखने हैं। चाहे तो उससे कोई प्रश्न भी पूछ लो, उस प्रश्न का जवाब वो शाम को देगा। श्रीमत पर चलो, जवाबदार मैं हूं, आज की मुरली में आया है एक जगह, जवाबदार बाप है। तो उस खत में सब कुछ लिख देना, अब तक का जीवन कैसा रहा ब्राह्मण, जब से बने तब से अब तक, लिखेंगे सभी। शाम को बाबा आएंगे, क्लास पूरी होगी प्रभु मिलन की 6:30 बजे से हम चालू करेंगे वो सात रंग। सात बातें जो हमें करनी है। 6:30 बजे योग चालू होता है और बाबा आते हैं 7:30 कभी 7:45 तक। ये जो समय है इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें? एक तो प्रभु का आह्वान, बुलाएंगे उसे, आ जाओ। आह्वान करना, बड़े लोग बिना इनविटेशन के नहीं आते। जो VIP होते हैं वो, उनको इनविटेशन लगता है। तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा VIP कौन है? शिव बाबा। तो उसे निमंत्रण लेके पहुंचना कि चलो देखो नीचे, निमंत्रण देना। 6:30 से जब तक बाबा आता नहीं तब तक मौन, योग, आह्वान, निमंत्रण, बाप से रूरियान, अशरीरी अवस्था, योग का प्रयोग, सब कुछ करना है। कुछ समय के लिए व्यक्त दुनिया से थोड़ा ऊपर उठना है, मोबाइल और मोबाइल की दुनिया से थोड़े समय के लिए दूर। ऐसे सप्त रंगों में यह पहला रंग। फिर बाबा आ जाते हैं और आते ही क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं पूरी सभा को। ये दूसरा रंग। इस दृष्टि के समय हमें क्या करना है, या ये बताओ आप अब तक क्या करके आए हो? जब बाबा दृष्टि देता है तो क्या करते हैं? दृष्टि लेते हैं वो देता है, हम लेते हैं और वरदान लेते हैं। क्या करना है? भगवान से उस दृष्टि में बहुत सारे वरदान समाये हुए हैं। उस समय यहां वहां देखना, इसको उसको देखना और कुछ करना या कुछ लिखना, ये सब काम नहीं करने हैं। या तैयारी करना, अभी मुरली चलने वाली है, बैग खोल के ये करके तैयारी करते रहते हैं कई सारे। ये केवल हम कल के लिए नहीं बता रहे, हमेशा के लिए बता रहे। जब जब बाबा आएंगे तब तब के लिए। अभी आप इधर है, अगली बार शायद वहां होंगे किसी ना किसी स्थान में, वहां पर या यहां। यहां पर भी बैठते हैं तो ऐसे ही सोचे हम वहां हैं। यहां हमारा तन होगा, वहां हमारा मन होगा। जब ऐसा प्रिय जीवन होगा तभी हम धन्य बन पाएंगे, तभी धन्य भागी ये जीवन होगा। तो दृष्टि समय क्या करना है? बाबा से दृष्टि से वरदान लेने हैं। एक दूसरा शक्तियां ले लेनी है कि वो पावरफुल दृष्टि घूम रही है, वो निगाहें इस भूमंडल पर घूम रही है, भगवान की आंखें घूम रही है। कितना अनूठा और रेयर और यूनिक इवेंट है ये कि भगवान आया है और देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। वह जो सब कुछ जानता है, वह जो ज्ञान का सागर है, वह जिसे मिलने के लिए भक्त तड़प रहे हैं, तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, वह जिसे पा अगर कोई ले तो सारे पूर्ण काम हो जाए, वह जो अन पाया है, वह जो अन मिला है संसार को, ऐसा अन पाया हुआ और अन मिला हुआ व्यक्तित्व हमारी आंखों के सामने है। तो हमें क्या करना है? शक्तियां ले लेनी है, वरदान ले लेने हैं। तीसरा और क्या करेंगे उस दृष्टि से? कमी कमजोरियों का दान कर देना है। चौथा और क्या करेंगे? दृष्टि जो आप बाबा दे रहे हैं हम क्या करें? भाइयों की तरफ से पीछे से शीतलता का अनुभव करना है, अनुभव करना है उस दृष्टि का, कि वो दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा जो संतप्त है, तप्त जीवनम, जो जीवन में इतनी तपिश, इतना ताप, इतना संताप, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतनी व्याधि, इतना दुख, इतना पश्चाताप है, शमन हो रहा है, शांत हो रहा है, उसकी दृष्टि पड़ते ही ऐसी तेजस्वी उसकी दृष्टि है, वो दृष्टि मुझ पर पड़ रही है सीधा यहां, और जैसे तीसरा नेत्र खुल रहा है मेरा, जन जन से सोई हुई आत्मा जाग रही है, और क्या अनुभव करेंगे? दृष्टि दे रहे हैं बाबा, ये बहुत सरल प्रश्न है, सब उत्तर दे सकते हैं इसका। प्यार का अनुभव करना है, उसके प्यार का अनुभव उसकी दृष्टि से, प्रेम का सागर आया था, आया है, वह आया है, चरणों में जगह मांगी थी तूने, दिल में बसा लिया, थे एक नजर के प्यासे, आंखों में समा लिया, वो आया है, उसकी दृष्टि से उसकी प्रेम का अनुभव, प्रभु प्रेम का, प्रेम के सागर का अनुभव, और क्या करेंगे उस दृष्टि से? नजर से निहाल होंगे, और क्या करेंगे? फिगर से फारिक, और क्या करेंगे? भर लेंगे उसके प्यार को, और क्या करेंगे? आनंद का अनुभव करेंगे, परमानंद का अनुभव, और जीवन में बाहर आ गई, पतझड़ था ये जीवन, उपकार तुम्हारा है बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं बतलाऊं, मरुभूमि थी ये जीवन, मुरझाया था ये उपवन, उसने गुलजार बनकर आया है वो, उस सुगंध का, उस संगीत का, उस गीत का, उस स्वर का, उस नाद का, उन शब्दों का अनुभव करना दृष्टि से। तीसरा, मुरली चालू होती है, बाबा मुरली सुनाते हैं, उस समय क्या करना है? बाबा बैठे हैं, मुरली चालू हो गई है, सफेद लाइट हो चुका है, और हम मुरली सुन रहे हैं, अब क्या करेंगे? क्या करना है? बाबा से बात करनी है, मुरली सुन, बाबा मुझसे बात कर रहा है, बाबा मेरे लिए मुरली चला है, इस पूरी सभा में केवल और केवल मैं हूं, भगवान मेरे लिए आकर मुरली चला रहा है, एक संकल्प। दूसरा, एक एक शब्द उधर चल रहा है और हम इधर स्वरूप बन रहे हैं, बाबा कह रहे फरिश्ता, हम फरिश्ता बन गए, बाबा कह रहे संपूर्ण, हम संपूर्ण बन गए, बाबा कह रहे संतुष्ट, हम संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं, बाबा जो जो शब्द कह रहे, बाबा कह रहे स्वराज्य अधिकारी, हम स्वराज्य अधिकारी का अनुभव कर रहे, बाबा कह रहे ओम शांति, हम ओम शांति का अनुभव कर रहे हैं, जो जो शब्द वो कहेगा वो तुरंत, इंस्टेंट, तभी के तभी, शीघ्र अति शीघ्र, एज सून एज पॉसिबल, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, ताबड़तोब अनुभव करना है, तभी के तभी। दूसरा, तीसरा क्या करेंगे? भगवान मुरली सुना रहे हैं और हम क्या करें? क्या करें? भगवान मुरली सुना रहा है, हम क्या करें? अपने स्वरूप में स्थित होना, और बुद्धि रूपी कलश में अमृत भरता जा रहा है, रत्न भरते जा रहे हैं, और उसकी आवाज को क्या करें? अंदर तक फील करें, संभाले उसकी उस आवाज को, वो गूंजती रहे लंबे समय तक, जितना हमारा चेतन मन शांत होगा, मन शांत होगा, उसकी आवाज को अंदर ही अंदर जाने दे, ताकि बाद में भी वो एक वो प्रतिध्वनि सुनाई देती रहे। और क्या करें? कुमारों की तरफ से जो कहे उसको धारण, वो तो आपने बोल दिया धारणा स्वरूप, अच्छा ये दूसरा हो सकता है, वो जो कह रहा है उसको धारण करे, एक है धारण तभी अनुभव करना, एक है धारण करने की, या तो प्रतिज्ञा कर सकते हैं वहीं के वहीं, बाबा ने कहा ये करो, हम वहीं के वहीं उसी के सामने प्रतिज्ञा कर ले कि हम ये करेंगे, तो एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी और खजाने से भरपूर। और नहीं कुछ दूसरी पॉइंट सुना, विश्व की आत्माओं का आह्वान और उन सबको देना है वही योग, यहां से ले रहे और वहां दे भी रहे, कितनी अच्छी बात है। भगवान से ले भी रहे और दे भी रहे, और बहनों की तरफ से, सेंटर की बहनों की तरफ से बाबा मुरली चला रहे हैं, हम क्या करें। अच्छा, बाबा को सारे समस्याओं का बोझ ट्रांसफर और हम हल्के होते जा रहे हैं, वो बोलते जा रहा है और हम इधर से, वो उधर से वो दे रहा है, हम इधर से बोझ दे रहे हैं, उधर से मुरली आ रही है, इधर से बोझ जा रहा है। और बहनों की तरफ से, रुको बहनों को बोलने, हाँ भगवान सुना रहा है और हम समर्पित होते जा रहे हैं, कितना अच्छा भाव है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, अब मैं ना रहा, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, दो नहीं अब एक हो गया है, जब तू था तो मैं नहीं, अब मैं था तो तू नहीं, अब एक हो गया है, एक ही बन गया है। बाइबल में एक जगह लिखा है, जीसस क्राइस्ट से पूछा जाता है तुम कौन हो, वो कहता है मैं आई एम सन ऑफ गॉड, पहला। दूसरा पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता कहाँ है, वो कहता है माई फादर दैट आर इन हेवन, मेरे पिता स्वर्ग में, तुम्हारा पिता है कहाँ पर, माई फादर इज इन मी एंड माई आई एम इन माई फादर, सेकेंड स्टेप, वो मुझ में है और मैं उसमें, दूसरी अवस्था। तीसरा, पर तुम्हारा फादर है कौन, माई फादर एंड आई आर वन, मैं और मेरा पिता एक ही है, ऐसी तीन अवस्थाओं का वर्णन है उसमें। पहली अवस्था, मैं शिवावा का बच्चा हूं, दूसरा तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, ये थोड़ा और समीप चल के और आगे चल के माई फादर एंड आई आर वन, वो और मैं एक हूं। इतना समर्पण होते गए उसमें कि जैसे एक ही हो गए। वो गोपियों को पता ही नहीं, अब गोपियां कहती है हम ही कृष्ण हैं, बेचारा उद्धव पागल, ये क्या हो क्या रहा है गोपियों को, कृष्ण जैसा ही बांसुरी बजा रही है, कृष्ण जैसी नृत्य कर रही है, एक गोपी कहती है मैं ही कृष्ण हूं। तुका मने होती तुझी माची एक ज्योति, मराठी में कहते हैं कि उसकी और मेरी ज्योति एक हो गई है, समर्पण हो जाना और उसमें समा जाना मुरली सुनते समय। और भाइयों की तरफ से, अभी रुको, कुमार नहीं, भाइयों की तरफ से भगवान मुरली सुना रहा है और हम क्या करें, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है, हम गॉडली स्टूडेंट है, कितना अच्छा भाव है। और धन्य धन्य हो गए, और अशरीरी अवस्था का अनुभव, और जन्म जन्म जिसका रास्ता देखा था वो अब आया है, एक बाप बच्चों से मिलने आया है, सदगुरु आया है वरदान देने के लिए, और हम बहुत खुश नसीब है। कितने आप, कितने खुश नसीब हो, बहुत बहुत, कितने सबसे ज्यादा, कितने 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 पद्मा पदम भाग्यशाली, वही सच्चा मात पिता है। यह भाव पाने का भाव, जन्म जन्म की थकान मिट गई, प्यास बुझ गई, भूख मिट गई, यह भाव। जिज्ञासा थी, भटक रहे थे भगवान को पाने के लिए, जिज्ञासा थी क्या है वो, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, अततो भक्ति जिज्ञासा, क्या है वो पता ही नहीं था, वो जिज्ञासा थी, वो इंक्वायरी का भाव था, वो अन्वेषण था, वो सत्यान्वेषण अब पूर्ण हुआ, वह सत्य की खोज, वह परम सत्य की खोज, स्वयं सत्य सामने आया है। कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं सत्य आया है। भागवत में लिखा है श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म का वर्णन नहीं है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य लिखा है। परम सत्य, परम सत्य धाम से सत्य का की स्थापना करने इस लोक में आया है। सत्य स्वरूप में कृष्ण का जन्म नहीं लिखा हुआ है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम त्रिकाल में जो सत्य है वह सत्य प्रकट हुआ है। ऐसा प्रगट्य उस परम सत्ता का और उस परम सत्य का हम उसके सामने हैं। चौथा, दादियों का बाबा से मिलन। हम क्या सोचें, हम भी वही है, या ये सोचेंगे हम क्यों नहीं है, यही जाएंगे क्या हमेशा और दुखी हो रहे खुद? कौन है जो देखकर दुखी हो जाते हैं दादियों को बाबा के साथ? कोई नहीं ना, खुश होती है ना। हम भी वही है, बाबा दादी बाबा के पास नहीं बैठे, हम बैठे हैं बाबा के पास। बाबा हमसे हाथ मिला रहा है, बाबा हमसे सिर से सिर टकरा रहा है, जैसे दादी जानकी के साथ टकराते ना ऐसे तो वो हमारे साथ कर रहा है। अरे हमसे इतना प्यार है कि दूसरों अरे वो किन से मिल रहा है? कौन है ये दादिया? उसके यज्ञ को जिन्होंने संभाला, सारे संसार से जब विरोध था, कोई साथ नहीं दे रहा था भगवान का, तब इन आत्माओं ने साथ दिया था। शायद हम भी वहां थे और हमने शायद उस जन्म में इनका विरोध किया होगा, किसी जन्म में शायद हम ही उस सिंध में कहीं ना कहीं थे और हम विरोधी थे, ये भी हो सकता है। उस समय उस विरोध की परिस्थिति में ये वो कन्याएं थी, दाव पर लगा दिया जीवन को। क्या उनको पता था आगे चलकर ये सब होने वाला है, यज्ञ इतना विस्तार को पाने वाला है, इतना धन संपदा आने वाली है? कुछ भी अज्ञात भविष्य था, अज्ञात में छलांग लगा दी, अज्ञात में जीवन को झोंक दिया। परसों दादी का क्लास हो रहा था ओम शांति भवन में, दादी ने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मुझे दादी कहेगा एक दिन। ऐसी तपस्विनी आत्माएं, ऐसी राजयोगिनी आत्माएं, वो यदि भगवान से मिले और भगवान उनसे मिले, कैसा सुंदर दृश्य है। यहां ईर्ष्या के लिए कोई स्थान ही नहीं। यदि आ रही है मन में ईर्ष्या तो शायद हम उन्हें जानते नहीं वो कौन है। तो चौथा रंग कौन सा है? दादियों का भगवान से मिलन। क्या सोचेंगे उस समय कि हम वहां हैं? और नहीं, अभी गुलदस्ता आगे का है, गुलदस्ता अभी पहुंचे नहीं, अभी हम दादियों तक है। दादियां मिल रही है, हम क्या सोचे? दादियों का भी धन्यवाद, हाँ, जिन्होंने गोविंद दियो दिखाए। और क्या सोचेंगे? दादियां मिल रही है, दादियां भरपूर हो जाएगी तो हमें भी भरपूर करेगी। कितना अच्छा संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प कहा जाता है। इस एक एक संकल्प में ऊर्जा है निगेटिव को नष्ट करने की। और क्या सोचेंगे? दादियां भगवान से मिल रही है, दादियां स्टेज पर है, दादियां बैठी हुई है, बाबा बात कर रहे हैं दादियों से, वो दादियां बाबा से बात कर रही है। हाँ, हमारे पूर्वज मिल रहे हैं, और दादियां चैनल है और मैसेंजर है, और देख देख कर खुश होना है। हाँ, हम भी मिल रहे हैं, इस दृश्य का आनंद लेना है, इस दृश्य का आनंद लेना है। भक्ति में दिखाया है जो रास लीला करते हैं कृष्ण उन गोपियों के साथ, वो वीडियो आपने देखा होगा शायद महाभारत का, जिसमें एक कृष्ण है और एक एक कृष्ण एक एक गोपी के साथ है, एक एक कृष्ण एक एक गोपी के साथ है और घूम रहे हैं, और घूमते घूमते दिखाया है बीच में ही वो एक एक गोपी नहीं एक एक ऋषि है। ये वही तपस्वी थे जिन्होंने जन्म जन्म प्रार्थना भक्ति की थी और कहा था कि हे गोविंद जब तुम आओगे तुम्हारे साथ हम लीला करेंगे। भगवान उनकी इच्छा पूर्ण कर रहा है। घूमते घूमते वो गोपी दिखाया, बीच में ही एक साधु है एक ऋषि है, एक एक से मिल रहा है। वैसे भगवान भी यहाँ पर एक एक दादी कौन है, वह ऋषि वह तपस्वी वह गोपी वह गोपिका है, एक एक राधा है और एक एक मीरा है। वो मिलन का दृश्य कितना सुंदर है। श्री राम वन से वापस आते हैं, हर एक अयोध्यावासी को लगता है कि वो मुझसे पहले मिले, तो राम क्या करते हैं, प्रभु धरि विविध शरीरा असंख्य रूप धारण करते हैं और एक एक अयोध्यावासी से मिलते हैं। वैसे वह बहुरूपी अब आया है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, गुलदस्ता। बाबा को गुलदस्ता दिया जाता है, हम क्या सोचे, हमारे तरफ से दिया जा रहा है एक दूसरा, वो गुलदस्ता मैं ही हूं क्या सोचेंगे, वो गुलदस्ता मैं हूं, दूसरा तीसरा, बाबा का एक एक फूल बाबा को अर्पित हो रहा है। या फिर ये भी सोचे ये गुलदस्ता मेरा जीवन है, एक एक फूल गुण है जीवन का, वो मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। और क्या सोचेंगे, गुलदस्ता वहां देव दिया जा रहा है और हम क्या सोचे, गुलदस्ते में गुलाब और वो गुलाब कौन है, हम हम क्या क्या ऐसा खुशबूदार हम फूल बन जाए कि वो बाबा को अर्पित हो रहा है, कितने सुंदर संकल्प है। उसके बाद है भोग, छठवां भोग। भगवान खाना खा रहा है, भोग खा रहा है, या दादी को खिला रहे हैं या दादी भगवान को खिला रहे हैं, हम क्या सोचे, हम भी खिला रहे हैं एक, और हमें भी वो खिला रहा है दो, तीसरा हमने बहुत प्यार से बनाया है और बाबा को अब खिला रहे। एक बार एक हंसी की बात याद आ रही है, एक बार बाबा को ओम शांति भवन या शायद हिस्ट्री हॉल पे हलवा बनाया गया, और इतना गर्म हलवा था वो जिसने बनाया था उसने वो देखा ही नहीं कि गर्म है, और गर्म गर्म हलवा बाबा के मुंह में डाल दिया तो बाबा ने क्या किया पता है, उसको बुलाया इधर आओ और उसको भी खिला दिया तब पता चला उसको कि बहुत गर्म था एक बार हिस्ट्री हॉल में बाबा मिल रहे थे तो दादी ने बाबा को पूछा, दादा बाबा आप चाय पीएंगे एक बार कभी हिस्ट्री हॉल में ही बाबा सभी से मिल रहे थे, बहुत कम संख्या थी सभी बच्चों की, माताएं बैठी थी सात आठ माताएं, भाइयों को लगा माताएं मिल रही है तब तक हम खाना खा के आते हैं, और भाई सभी खाना खाने चले गए, अब माताएं कब तक मिलेगी, बात कर ली मिल लिया एक एक से पर्सनल मुलाकात हो गया सब हो गया, माताओं को लगा अब चलो तब तक भाई आ जाएंगे, माताएं भी चली गई, भगवान अकेला बैठा है कोई तो आ जाओ मैं किससे बात करूं। एक वो समय था और अब समय है कि स्टेज पर जाना भी मुश्किल है अभी तो दूर से ही देख लिया टीवी पर देख लिया मुश्किल है, और एक समय ऐसा भी आएगा कि केवल ये भगवान है बस टीवी पर और कुछ नहीं। ऐसा पार्ट कैसा चेंज हो गया, वो पार्ट था वो दिन थे, वो दिन कितने प्यारे थे, पर ये दिन भी उतने ही प्यारे हैं ये दूसरी बात है, परंतु वो भी दिन थे यज्ञ में जबकि भगवान अकेला बैठा है कोई नहीं है साथ में, इंतजार कर रहा है कोई आओ बैठो मैं बात करूंगा, वो भी समय था। तो भगवान को भोग लग रहा है, हम क्या सोचे? जन्म जन्म जिसको भोग लगाने की इच्छा थी, अब उसको भोग लगा रहे। इतने दिन तो मनुष्य को खिलाते रहे, बना बना कर किचन में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, बच्चों को खिलाए, पति को खिलाया, मेहमानों को खिलाया, अब उसको खिलाने की बारी है। वाह मेरा भाग्य, और क्या करना है, वो भोग खा रहा है, वो हमें खिला रहा है। और भी कोई संकल्प माता बहनों की तरफ से? भगवान भोग खा रहा है, हम क्या सोचे? रुको, बहनों को बोलने दो, बाबा खाते खाते आशीर्वाद। और दूसरा बताओ कुछ। यू ही तुम यू ही खाते रहो और हम यू ही खिलाते रहेंगे। वाह, हम उसे मन से खिला रहे हैं, हर संबंध से खिला रहे हैं। वो भावना को स्वीकार करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। हे अर्जुन, यदि कोई मुझे पत्र पुष्प और फल भी दे दे तो मैं अति प्रेम से उसे स्वीकार करूंगा। उसे किसी भोग की चाहना नहीं है, वैसे वो भावना का भूखा है। कुछ भी खिला दो उसे, वो खा लेगा। झूठे बेर उसने खाए हैं तो ये नहीं खाएगा। छिलके भी खा रहे। वो विदुरानी इतनी भाव विभोर है कृष्ण के प्रेम में कि केला खुद खा रही है। ऐसी ऊंची प्रेम सगाई, कितनी ऊंची ये प्रेम सगाई है, उसे भान ही नहीं है मैं क्या कर रही हूं। वो विदुर परेशान है, दोनों का ये क्या चल रहा है आपस में। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे प्रेम से उसे खिलाना। अभी तक जड़ को भोग लगाया था, अब चैतन्य ठाकुर खड़ा है। भोग में हमारा प्यार समाया हुआ है, हमारा जीवन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण समाये हैं। विश्व की हर आत्मा तृप्त हो रही है। हम किसको भोग लगा रहे हैं? वो अन्नपूर्णा माँ है। भगवान कौन है? स्वयं अन्नपूर्णा माँ है। उस अन्नपूर्णा माँ भोग स्वीकार भी कर रही है और हमें खिला रही है। भावना से वो स्वीकार कर रहा है। ये हाँ, ये बात भी कितनी वंडरफुल। और एक दृश्य है, भगवान टोली फेंक रहा है, इस लीला को देखना है। लीला करता है भगवान, भक्ति में भी दिखाया है। सीता खो गई तो राम पुकार रहा है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। पूछ रहा है वन से, पक्षियों से, मेरी सीता कहाँ है। यहाँ भगवान पूछ रहा है, मेरे बच्चे कहाँ है। अंतिम रंग विदाई, भगवान जा रहा है, हम क्या सोचे? होमवर्क करना है, पहले तो प्रॉमिस करना है। तुमने जो कहा, जो होमवर्क दिया, जो गृह कार्य दिया, वो हम करके रहेंगे। एक और, आंखों में प्रेम के आंसू और नहीं आए तो और नहीं आए तो क्या करेंगे? आने तो चाहिए, पर नहीं आए तो लाएंगे। अपने आप ही आ जाए। बाबा से कहेंगे वापस आना, कब आना, कब, जल्दी आना। और क्या कहेंगे उससे? वो जा रहा है, विदाई ले रहा है, तुम सा हसीन बाबा और कोई नहीं जहां में। गीत बजते हैं, आंखों से निहाल करते करते वो विदाई ले रहा है। और क्या क्या, इतने दिन का प्यार भर लेंगे स्टॉक। और बाबा कहते मैं रोज ही आता हूं। मैं तो रोज ही आता हूं, रोज ही मेरे से मिलन मनाओ। अभी नहीं है, हर समय प्रतिपल। क्या क्या कहेंगे, मेरे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बाबा रुक जाओ, बाबा को पकड़ लेना हाथ पकड़ के, जाने नहीं देंगे हम, न जाओ छोड़कर, मन अभी भरा नहीं है। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। गीत सुनाए ना कि बाबा कहते हैं अब मुझको नहीं बुलाओ, तुम ही मेरे पास आ जाओ, तैयार हो के मेरे पास आ जाओ। एक बहुत सुंदर गीत है जो हमें बहुत प्रिय है, अगर आप कहें तो आप, हम गाएंगे आपके हमारे पीछे, आप सब गाना, हम कोई गायक नहीं है, परंतु प्रभु प्रेम जिसको है वो हर एक गायक है। मौजों के दिन मिलन की ये रातें बीते कभी ना, थम जाए हरदम गर आज हमारा, बस जो चले तो हम रोक लेंगे, दिन ये सुहाने हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने। गीत है तो बजा, प्यारे नजारे तू मात पिता बन, साजन सखा बन, वो प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा, दिल के मंदिर में तुमको बिठा के, दीदार करूं मैं हर पल तुम्हारा, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। आगे भूल गए। ओम शांति। अगर गीत है तो यही गीत बजाइए, अगर नहीं है तो कोई भी। से आप सबसे हम अभी आज विदाई लेंगे और आप सबके साथ तो ये अंतिम मुलाकात है यहाँ पर। इसके बाद कुमारियों से और एक टीचर बहनों का साथ है। तो इतने प्रेम से स्मृति पुष्प छे शायद गीत, इतने प्रेम से और इतनी शांति से, इतनी तन्मयता से और इतनी आदर से आप सब ने हमें सुना। हम आप सब से बहुत छोटे हैं, ज्ञान में भी और उम्र में भी। तो जैसे कल भी कहा, यदि कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें माफ कर देना। ओम शांति।
योग के बहुत जागरूक हैं और योग का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, तो मुझे तो ऐसे लगा है कि शायद आप जो कराते कराते आप यही अनुभव कर रहे होंगे कि मैं, मेरी अवस्था भी मजबूत हुई है। अवश्य आपको भी ऐसा लगा होगा, क्योंकि बहुत से भाई बहनों ने कहा कि हम पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो हमने उनको यह कह के डाला कि आप तो मौन में हैं और आप हमारी अवस्था के साथ साथ अपनी अवस्था भी और मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि आपको ये देखा होगा कि कितने कर्मठ हैं अपने निश्चय के और अपनी तपस्या के, जरा भी व्यर्थ आप नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें बहनों को कहीं महसूस ही नहीं हो रहा कि भाई साहब यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनको किचन से फरी है, रोटी ही नहीं खाते, खाना बनाने का भी कोई फ्रूट खाएंगे, जूस पिएंगे, जैसे होते हैं ना जंगलों में कंदमूल खाने वाले, तो क्या जीवन है और इससे क्या इनको बल मिला है, ऐसी क्या शक्ति मिली है कि देवता भी तो फल खा के अपना जीवन इतना शेष बनाते थे। तो ये जो अन्न का त्याग भी एक साल से अन्न का त्याग किया हुआ है, लेकिन आप उन्हें शक्ति देखो कितनी मजबूत शक्ति है और किस प्रकार, मैं सोच तो कहीं गौतम बुद्ध की आत्मा तो नहीं प्रवेश की हुई ऐसा कुछ लगता है, ऐसे लगते हाँ, तो ऐसा विराग। और मैं समझता हूँ क्योंकि एक विराग जो है, एक त्याग जो है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत श्रेष्ठ करता है। मैं कभी कभी मैं सबको ये कहता हूँ कि ये जो जैन मॉन्क्स हैं, जैन साधनियाँ हैं, ये अगर इनको बाबा मिल जाए, शिव बाबा मिल जाए, तो आप लोगों से बहुत आगे चलें, आप लोगों से बहुत आगे जाएं, क्योंकि इनका जीवन, इनका त्याग ही इनको आगे बढ़ा रहा है, इनका त्याग ही इनको ऊंचे शिखर पे ला रहा है। तो हम भी इस प्रकार का साथ साथ त्याग रखें तो कितना हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। एक बार फिर धन्यवाद। मैं एक बार आपसे और अपील करना चाहूँगा कि आपने हमारा जो नया भवन है, आपने उसमें प्रवेश किया, आपको कैसा लगा और आप कुछ योग की किरणें बिखेर के आए, दो शब्द आप उसके लिए बोलेंगे और उसकी उसकी सफलता के लिए भी आप जल्दी जल्दी हम उसमें प्रवेश करें, और आप जब आए तो हम बहुत बड़ी संख्या में उसमें आपका इंतजार करें, और आपको आपका बहुत बड़ी संख्या में आपको, क्योंकि अभी जो हमने आपका परिचय दिया तो बहुत से लोग आपको, आपसे परिचित नहीं थे, ऐसे सचिन भाई कौन से होंगे, लेकिन ये तो सुनने से और देखने से पता लगता है कि सुमुख जो आदमी आया है उसको सुना तब पता लगता है। और जब आप, अब ये भाई, ये बहनें आपके फैन हो चुके हैं, और जब आप दोबारा आएंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब की सीडी बनी है, और जो भी भाई लेना चाहेंगे वो थोड़ा सा हाथ खड़ा कर देंगे, कितने भाई इनकी सीडी प्राप्त करना चाहेंगे, लगभग 100 तो बना ही देंगे हरीश भाई, तो हम उनसे ले लेंगे और अपना जैसे भाषण बताया उसको बार बार रिपीट करके चलेंगे दोनों दोबारा।
ओम शांति। सबसे पहले तो हम बड़ी बहन जी, रमेश बहन जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि हम तो लगता है हम उन्हें जानते तो नहीं थे, पर जब हमने सुना था कि यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम सूक्ष्म में ये सोच रहे थे कि शायद यहाँ एक महातपस्वी आत्मा बैठी है, क्योंकि बिना ऐसी आत्मा के ये कार्य हो नहीं सकता, जो एक ही जगह पर इतनी आत्माओं को आकर्षित कर ले और इतना उसका विस्तार करे, और उसका कहीं इस तरह से लौकिक जैसा कोई नाम नहीं, कहीं कोई इस तरह से प्रचार नहीं, पब्लिसिटी नहीं, गुप्त विधि से ये कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले धन्यवाद तो रमेश बहन जी का, जिन्होंने, जिनकी प्रेरणा से हम कहे, उनके वाइब्रेशन से ही हम यहाँ आए हैं, किसी के निमंत्रण से नहीं आए हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हमने हरियाणा में ही पहली बार कदम रखा है, हमको लगता है केवल और केवल उस महान आत्मा के वाइब्रेशन ने हमें यहाँ तक खींचा है। दूसरा, यहाँ की सारी बहनें, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बहुत अच्छी खातरी की, हमें थोड़ा ज्यादा ही खिला दिया और यहाँ से हम थोड़ा मोटा बन के जा रहे हैं। और धन्यवाद डॉक्टर साहब का, धन्यवाद प्रमोद भाई का, जो भाई हमको उधर लेने आए थे विजय भाई का, और दूसरे डॉक्टर साहब जो है राजेंद्र भाई जी, उनका भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सभी माताओं का, बाबा का तो है ही है धन्यवाद सबसे पहला, सभी माताओं का, सभी भाइयों का। कल हम जहाँ हमको दिखाने लेके गए थे 30 पैलेस, तो वो देखा तो हमने पाया कि वहाँ के वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी रोज जो भी छोटा मोटा विघ्न है उस स्थान को रोज उसकी मनसा सेवा करनी, रोज उसको इमर्ज करना, रोज फरिश्ता स्वरूप में वहां जाना और उसे विघ्न विनाशक की किरणें देना, पवित्रता की किरणें देना, जो भी आत्माएं उससे जुड़ी हुई है उन सभी को किरणें देना उस भूमि से जुड़ी हुई जो भी आत्माएं, ताकि वो भूमि जल्दी से जल्दी बाबा की बन जाए, इस यज्ञ की बन जाए, यज्ञ के काम आ जाए और उस भूमि पर बहुत महान कार्य होने हैं एक दिन। विश्व की, मैं तो कहूंगा हरियाणा की जितनी महान आत्माएं, जितने तपस्वी, योगी, साधु, महात्मा, पॉलिटिशियंस, सारे के सारे एक दिन वहां पहुंचने हैं। तो ऐसी भूमि में हमारा तन, मन और धन सब कुछ लगना चाहिए। वो अवस्था ना हो कि किसी की दबी रही धूल वाली। हमारा धन, बाबा ने कहा है जो गृहस्थी, एक मुरली अभी अभी चली थी, 75% से भी ज्यादा यहाँ लगा देते गृहस्थी में रहते हुए भी, ऐसे जो लोग हैं वो नंबर वन पे बाबा ने कहा था। तो हमारा तन भी, हमारा मन भी और हमारा धन भी, जितना हम सहयोग कर सके। चलो धन की सेवा हम नहीं कर सकते, मन की सेवा तो कर ही सकते हैं। रोज अमृत वेले उस स्थान को इमर्ज करना है और उसे किरणें देना है, ताकि जब वो स्थान विश्व व्यापक केंद्र बन जाएगा और विश्व की आत्माएं वहां आएगी हजारों और लाखों की संख्या में, और उनके मुख से जो दुआएं निकलेगी, तो जिन जिन ने सहयोग दिया, जैसे वो छोटी सी गिलहरी जिसने पुल बांधने के लिए राम को मदद की थी, दिखाया है उसका भी सहयोग है उसने। तो अगर इस ईश्वरीय कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में एक बूंद भी हम देते हैं, बूंद बूंद से परमात्मा तालाब भरेगा, उस बूंद में हमारा भी एक बूंद होगा। तो ऐसी तन, मन, धन, जन से उस स्थान की हमें सेवा करनी है। ओम शांति।
मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए रखा था।